नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पाइथन फॉर फाइनेंस, मास्टरिंग डेटा ड्रिवन फाइनेंस, इफ्स हिल्पिश की व्यावहारिक तकनीकी पुस्तक है। इसका दूसरा संस्करण पाइथन 3 के संदर्भ में वित्तीय डेटा विश्लेषण, मात्रात्मक मॉडलिंग और डेरिवेटिव्स मूल्यांकन की कार्यप्रणाली समझाता है। पुस्तक का उद्देश्य केवल भाषा के सिंटैक्स से परिचय कराना नहीं है, बल्कि वित्तीय समस्याओं को पुनरुत्पाद्य, कुशल और जांच योग्य कोड में बदलना है। इसमें इंटरैक्टिव आईपाइथन नोटबुक्स, वास्तविक या बाजार सदृश डेटा और क्रमिक कोड उदाहरणों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठक डेटा आयात करने, संरचित करने, विजुअलाइज करने और टाइम सीरीज का विश्लेषण करने से लेकर मोंटे कार्लो सिमुलेशन द्वारा जोखिम तथा विकल्पों का मूल्यांकन करने तक की यात्रा करता है। लेखक पाइथन की सुविधा के साथ उसकी प्रदर्शन संबंधी सीमाओं को भी संबोधित करते हैं, इसलिए वे वेक्टराइजेशन, न्यूम्पाय, पैंडाज, संकलन और समानांतर निष्पादन जैसे उपायों पर जोर देते हैं। यह पुस्तक प्रोग्रामिंग, वित्तीय सिद्धांत और कंप्यूटेशनल अनुशासन के संगम पर स्थित है। इसे पढ़ने के लिए किसी समान प्रोग्रामिंग भाषा और मानक वित्तीय मॉडलों की बुनियादी समझ उपयोगी रहती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वित्तीय विश्लेषण के लिए पाइथन परिवेश और पुनरुत्पाद्य नोटबुक कार्यप्रवाह। पुस्तक की बुनियाद यह विचार है कि वित्तीय विश्लेषण केवल अंतिम संख्या निकालने का काम नहीं, बल्कि ऐसा कार्यप्रवाह बनाना है जिसे दोबारा चलाया, बदला और जांचा जा सके। लेखक पाइथन परिवेश, इंटरैक्टिव आईपाइथन नोटबुक्स और वैज्ञानिक लाइब्रेरीज के प्रयोग से शुरुआत करते हैं। नोटबुक में कोड, गणना, तालिकाएं, चार्ट और व्याख्या एक ही स्थान पर रहते हैं। इससे किसी विकल्प मूल्य, रिटर्न श्रृंखला या सिमुलेशन परिणाम के पीछे के कदमों को अलग से खोजने की जरूरत कम होती है। वित्त में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा स्रोत, समय अवधि, अनुमान और मॉडल पैरामीटर परिणाम को बहुत बदल सकते हैं। पुस्तक पाइथन को वित्त के लिए उपयोगी बताती है, क्योंकि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में संख्यात्मक गणना, डेटा संचालन और चित्रण संभव है। फिर भी लेखक इसे जादुई समाधान की तरह पेश नहीं करते। एक नोटबुक में चल जाने वाला प्रयोग तभी उपयोगी विश्लेषण बनता है जब डेटा की संरचना, समय, सूचकांक, अनुपलब्ध मान, गणना की इकाइयां और परिणामों की व्याख्या स्पष्ट हो। इस दृष्टि से पाठक केवल लाइब्रेरी कॉल याद नहीं करता, बल्कि विश्लेषण को क्रमबद्ध दस्तावेज की तरह बनाना सीखता है। डेवलपर के लिए यह प्रोटोटाइप से मॉडल तक की राह है और क्वांट विश्लेषक के लिए धारणाओं तथा परिणामों को टीम के सामने पारदर्शी ढंग से रखने का माध्यम है। दूसरा, न्यूम्पाय और पैंडास से बाजार डेटा, टाइम सीरीज और विजुअलाइजेशन का संचालन। डेटा ड्रिवन फाइनेंस में मुख्य कठिनाई अक्सर सूत्र नहीं, डेटा की गुणवत्ता और संरचना होती है। पुस्तक न्यूम्पाय के एरे केंद्रित गणित और पैंडास के लेबलयुक्त डेटा ढांचों को इस समस्या के व्यावहारिक उपकरणों के रूप में रखती है। मूल्य, रिटर्न, ट्रेडिंग तिथियां और अनेक परिसंपत्तियों की श्रृंखलाएं साधारण सूचियों की तरह नहीं होती। उनमें समय, क्षेत्र, बाजार बंद रहने के दिन, असमान अवलोकन, रिक्त मान और अलग अलग आवृत्तियां होती हैं। सही इंडेक्सिंग और संलेखन के बिना तुलना या सहसंबंध जैसी गणनाएं भ्रामक हो सकती हैं। पैंडाज के माध्यम से श्रृंखलाओं को साफ करना, चुनना, पुनर्मुनाकरण करना और संक्षेपित करना विश्लेषण का आधार बनता है। न्यूम्पाय वेक्टराइज गणना को संभव बनाता है, जिससे कई अवलोकनों पर एक साथ क्रिया की जा सकती है। यह वित्तीय कोड को छोटे लूपों के बजाय गणितीय अभिव्यक्ति के निकट लाता है और अक्सर गति भी बढ़ाता है। विजुअलाइजेशन को पुस्तक सजावटी अंतिम चरण नहीं मानती। मूल्य पथ, वितरण, अस्थिरता या रिटर्न की तस्वीरें डेटा त्रुटि, असामान्य घटनाओं और मॉडल की अनुचित धारणाओं को जल्दी दिखा सकती है, लेकिन चार्ट कारण सिद्ध नहीं करते, इसलिए दृश्य संकेतों को सांख्यिकीय जांच और आर्थिक संदर्भ के साथ जोड़ना जरूरी है। यह भाग पाठक को डेटा देखने, बदलने और प्रश्न करने की आदत देता है। तीसरा, मोंटे कार्लो सिमुलेशन द्वारा डेरिवेटिव्स मूल्यांकन और जोखिम का ढांचा। पुस्तक की विशिष्ट तकनीकी धुरी मोंटे कार्लो सिमुलेशन पर आधारित डेरिवेटिव्स और जोखिम विश्लेषण फ्रेमवर्क है। इसका मूल तर्क सीधा है। जब भविष्य का बाजार मूल्य अनिश्चित है, तब एक ही अनुमानित पथ पर निर्भर रहने के बजाय मॉडल के अनुसार बहुत से संभावित पथ उत्पन्न किए जा सकते हैं। प्रत्येक पथ पर किसी विकल्प या अन्य अनुबंध का भुगतान निकाला जाता है, फिर उचित छूट और औसतकरण के माध्यम से अनुमानित मूल्य प्राप्त होता है। यह पद्धति खास तौर पर तब उपयोगी होती है जब भुगतान संरचना जटिल हो या अनेक जोखिम कारक जुड़े हों। फिर भी सिमुलेशन केवल यादृच्छिक संख्याएं उत्पन्न करने का नाम नहीं है। परिणाम उस प्रक्रिया पर निर्भर है जो अंतर्निहित मूल्य को चलाती है, जैसे ज्यामितीय ब्राउनियन मोशन या जंप डिफ्यूजन। ब्याज दर अस्थिरता, आरंभिक मूल्य, परिपक्वता और भुगतान नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। अनुमान में नमूना त्रुटि भी रहती है, इसलिए अधिक पद सामान्यतः स्थिरता बढ़ाते हैं पर गणना लागत बढ़ती है। लेखक का केस अध्ययन इन तत्वों को अलग अलग सूत्रों की सूची के बजाय एक कार्यशील संरचना में जोड़ता है। इस प्रकार पाठक मूल्यांकन, परिदृश्य निर्माण और जोखिम मापन के रिश्ते को समझ सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि मॉडल से निकला मूल्य बाजार सत्य नहीं, चुनी हुई धारणाओं के भीतर निकला अनुमान है। चौथा, वित्तीय गणना में प्रदर्शन, वेक्टराइजेशन और समानांतर निष्पादन की भूमिका पाइथन की सरलता के विरुद्ध सामान्य आपत्ति उसकी गति को लेकर होती है। पुस्तक इस आपत्ति को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि दिखाती है कि वित्तीय गणना की गति अक्सर कोड की संरचना और डेटा की गति पर निर्भर करती है। बड़े एरे पर पाइथन स्तर के बार बार चलने वाले लूप धीमे हो सकते हैं। इसके विपरीत न्यूम्पाई के वेक्टराइज्ड ऑपरेशन संकलित निम्न स्तरीय कार्यान्वयन का लाभ लेते हैं। इसलिए कई मामलों में एक गणितीय एरे अभिव्यक्ति स्पष्ट लूप की तुलना में अधिक संक्षिप्त और तेज होती है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह नहीं कि हर कोड को तुरंत जटिल अनुकूलन में बदला जाए, पहले सही परिणाम, साफ डेटा ढांचा और मापन योग्य बाधा पहचानना जरूरी है। उसके बाद न्यूम्बा जैसे डायनेमिक कंपाइलेशन उपकरण उपयुक्त गणनात्मक हिस्सों को मशीन कोड के निकट गति दे सकते हैं। स्वतंत्र सिमुलेशन या कार्यों के लिए मल्टीप्रोसेसिंग समानांतर निष्पादन का रास्ता देती है। इन उपायों की उपयोगिता कार्य के स्वरूप पर निर्भर है। यदि बाधा डिस्क से डेटा पढ़ना या लिखना है तो केवल सीपीयू गणना तेज करने से पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण पुस्तक हार्डवेयर बाउंड इनपुट आउटपुट और पोर्टेबल्स जैसे भंडारण साधनों की चर्चा करती है। यह विषय पाठक को प्रदर्शन को अनुमान से नहीं, माप, कार्यभार और सही तकनीक के आधार पर देखने की दृष्टि देता है। अंत में बाजार मॉडल को पुनः प्रयोग योग्य वैल्यूएशन फ्रेमवर्क में बदलने का अनुशासन। पुस्तक का बड़ा पाठ यह है कि वित्तीय मॉडलिंग अलग अलग स्क्रिप्टों का संग्रह नहीं होनी चाहिए। लेखक एक विस्तृत केस अध्ययन के जरिए ऐसे घटकों का ढांचा विकसित करते हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। बाजार परिवेश में मूल्यांकन तिथि, ब्याज दर, अस्थिरता, मुद्रा या अन्य आवश्यक डेटा रखा जा सकता है। सिमुलेशन घटक जोखिम कारक के संभावित पथ बनाता है, जबकि मूल्यांकन घटक अनुबंध के भुगतान नियम को लागू करता है। इस विभाजन का लाभ यह है कि किसी एक इनपुट या मॉडल को बदलने पर पूरे कोड को फिर से लिखने की आवश्यकता घटती है। यह डिजाइन वित्तीय तर्क और सॉफ्टवेयर तर्क के बीच उपयोगी सीमा बनाता है। उदाहरण के लिए भुगतान नियम को बदलना और यादृच्छिक संख्या निर्माण की विधि बदलना अलग जिम्मेदारियां हैं। इन्हें एक ही बड़े फंक्शन में मिला देने से परीक्षण और त्रुटि पहचान कठिन हो जाती है। एक मॉड्यूलर ढांचा पोर्टफोलियो स्तर के मूल्यांकन तथा जोखिम विश्लेषण तक विस्तार के लिए भी बेहतर आधार देता है। हालांकि ऐसा फ्रेमवर्क वास्तविक उत्पादन प्रणाली का पूर्ण विकल्प नहीं है। उत्पादन में डेटा सत्यापन, मॉडल गवर्नेंस, सुरक्षा, ऑडिट ट्रेल और परिचालन नियंत्रण भी चाहिए। फिर भी पुस्तक का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाठक को सूत्र लागू करने से आगे बढ़ाकर संगठित, परीक्षण योग्य और विस्तारक्षम वित्तीय सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा देती है। निष्कर्ष में पाइथन फॉर फाइनेंस उन डेवलपर्स, क्वांट विश्लेषकों, वित्तीय इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों और तकनीकी बाजार पेशेवरों के लिए सबसे उपयुक्त है जो पाइथन को वास्तविक वित्तीय समस्याओं में लागू करना चाहते हैं। यह बिल्कुल नए प्रोग्रामर के लिए सहज प्रथम पाठ्यपुस्तक नहीं है, क्योंकि वित्तीय मॉडल और किसी प्रोग्रामिंग भाषा की बुनियादी परिचितता अपेक्षित है। लेकिन जिन पाठकों के पास यह आधार है, उन्हें भाषा, डेटा और मॉडलिंग के बीच सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी क्रमबद्धता में है। पाठक टाइम सीरीज डेटा के संचालन और चार्ट से शुरू कर सकता है, फिर वेक्टराइज गणना, प्रदर्शन सुधार और सिमुलेशन आधारित मूल्यांकन तक पहुंच सकता है। इससे वह केवल तैयार पैकेज चलाने के बजाय गणना के पीछे की संरचना और धारणाओं को समझने लगता है। डेरिवेटिव्स या जोखिम के संदर्भ में यह समझ विशेष महत्व रखती है, क्योंकि आउटपुट की विश्वसनीयता मॉडल, डेटा और कार्यान्वयन तीनों पर निर्भर करती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर केवल पाइथन ट्यूटोरियल या केवल वित्त सिद्धांत होने से इनकार में है। यह इंटरैक्टिव नोटबुक्स, वैज्ञानिक पाइथन उपकरणों और एक बड़े मोटे कार्लो आधारित वैल्यूएशन फ्रेमवर्क को साथ रखती है। साथ ही यह गति की समस्या को वेक्टराइजेशन, न्यूम्बा, मल्टीप्रोसेसिंग और इनपुट आउटपुट के संदर्भ में व्यावहारिक रूप से लेती है। इसलिए पुस्तक का मूल्य तैयार ट्रेडिंग रणनीति देने में नहीं, बल्कि डेटा ड्रिवन वित्तीय विश्लेषण और संगठित कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की मजबूत तकनीकी नींव देने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ईव्स हिल्पिश, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।